ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक क्रमांक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव यानी आना, भगवान का जन्म होना, उसको संस्कृत में आविर्भाव कहते हैं, जाने को तिरोभाव कहते हैं। तो जो मेरे आविर्भाव यानी जन्म इस दुनिया में जो मैं लेता हूँ, भगवान कह रहे हैं, और मेरे कर्मों की दिव्यता को समझता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर पुनः इस भौतिक संस्कार में जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। एक्चुअली पूरी भगवद गीता बोलने की जरूरत ही नहीं है, 1 श्लोक ही काफ़ी है। 1 श्लोका इज इनफ। क्या करेंगे आप तो मेरे धाम में पहुंच जाएंगे, बस, दैट इज़ द गोल ऑफ लाइफ। लेकिन वो इतना जल्दी समझ में आता नहीं, इसलिए भगवान ने 700 श्लोक बताए, 700 श्लोकाज क्यों बताए, क्यों भाई आपको बोलेंगे कि ये गोविंदा में ना, वो जो गोविंदा स्पेशल पिज्ज़ा है ना, वो बेस्ट है। तो आप बोलेंगे और क्या है, फिर आप बोलेंगे पंजाबी पराठा भी है, डोसा भी है, ये भी है, वो भी है, वो कैसा होता है, ये कैसा होता है, उड़द दाल का बनता है, ये चावल का बनता है, वैसे बनता है, ठीक है, फिर वो गोविंदा का स्पेशल पिज्ज़ा ही देना। आपको समझ में आया, आपने लेना है वो बेस्ट आइटम, लेकिन उसके पहले आप पता करना चाहोगे कि और क्या क्या है, फिर आप ही कंक्लूड करोगे कि ये सब में से यही बेस्ट है जो पहले ही बताया गया था। लेकिन वो पहले ही बताया गया था वो बेस्ट है, वो समझने के लिए बाकी सब समझना पड़ता है ना, अंडरस्टैंड। वैसे ही है ये भगवद गीता का भी। अभी बताना क्या है, भक्ति योग ये बताना है उनको। लेकिन क्या क्या बताया, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, ज्ञान योग, हाँ, और बहुत सारे योग बताए, राजयोग, सहज योग, बहुत सारे योगों को बताया। और बाद में क्या बताया, योगिनाम अपि सर्वेशां मद्गते अंतरात्मना, ये सारे योग करने वाले सभी लोग, हरे कृष्णा, सभी लोग, योगिनाम अपि सर्वेशां, सभी प्रकार के योगियों में वो योगी श्रेष्ठ है जो मुझ में अपना दिल लगाता है, यानी भक्ति योग। लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ है बताने के लिए बाकी सब कुछ बताना पड़ा, तब जाके समझ में आया कि भक्ति योग श्रेष्ठ है। अब भक्ति योग भी कैसे बताया है, पहले 6 अध्याय कर्म के बारे में बताया है, आखिर के 6 अध्याय संन्यास के बारे में बताया है, मतलब शरणागति, विरक्ति, और बीच के 6 योग में भक्ति योग का वर्णन किया है। उसमें भी 12वें में इम्पोर्टेंट वर्णन किया है, वो कैसे है, इसको संभाल के रखा है इधर से बीच में। तो अब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवान को कहना क्या है, फाइनली व्हाट यू वांट टू टेल यू। हर एक व्यक्ति जो उपदेशक होता है ना, वो एक उपदेश मन में सोच के आता है कि मुझे ये बताना है, फिर कुछ प्रस्तावना करता है, फिर कुछ स्टोरी बताता है, फिर बीच में उपदेश बताता है, फिर उसको कंक्लूड करता है। आपको अगर बोलेंगे एक ही लाइन बता देंगे, सर्वभूतो धर्मं परित्यज्य, तो आप बोलेंगे क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। इसलिए भगवान ने 45 मिनट्स लिए। 45 मिनट्स क्यों लिए, क्योंकि वो अर्जुन था, इसलिए। अगर हम पाप रहते तो 450 मिनट लेते, यू अंडरस्टैंड, बिकॉज अर्जुन था ना, एकदम प्रगत आत्मा था वो। उसको वर्णन किया है कि जिसको इन इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेसिव वैल्यूज ऑफ लाइफ, वो आर्य था। आर्य यानी जिसको जीवन के प्रगतिशील मूल्य जो है उसके बारे में पता है। इज नॉट ऑर्डिनरी सोल, कोई चमार कुंभार भंगी नहीं था वो, वो पूरा उन्नत आर्य था वो, आर्य संस्कृति में उन्नत व्यक्ति था, श्रेष्ठ व्यक्ति था वो, सद्गुणों में भी, क्षत्र तेज में भी, कुल में भी हर तरह से वो श्रेष्ठ था, इसलिए उसको कम समय में बताया गया, वो भी इमरजेंसी में समझाया गया। और हम जैसे खड़े होते तो हमको भी दिन भर लगता और एक दिन युद्ध पोस्टपोन करना पड़ता, लेकिन भगवान के पास इतना समय नहीं था ना अर्जुन के पास समय था। फिर भी अर्जुन के हिसाब से 45 मिनट लगे, ऐसे कई जगह वर्णन दिया गया है। इतना जल्दी जल्दी अर्जुन ग्रास्प कर सका, और उसमें प्रश्न भी पूछे उसने बहुत सारे, क्वेश्चन आंसर भी हुआ, ऐसा नहीं खाली एक तरफा लेक्चर चलता रहा, क्वेश्चन आंसर भी बहुत सारे, पूरा संवाद ही है, कृष्ण अर्जुन संवाद है। हाँ, भगवद गीता क्या है? कृष्ण अर्जुन संवाद है। तो अभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे थोड़ा सा, बहुत लंबा तात्पर्य है, थोड़ा सा पढ़ेंगे। इस अध्याय के 9वें श्लोक को हम पढ़ रहे हैं, तो 6ठे श्लोक में भगवान ने दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या की है ऑलरेडी। जो मनुष्य भगवान के जन्म के सत्य को समझ लेता है वो इस भाव बंधन से मुक्त हो जाता है, और इस शरीर को छोड़ते ही वो तुरंत भगवान के धाम लौट जाता है। इस दुनिया का जो बंधन है उसको भाव बंधन कहते हैं, भव बंधन यानी जन्म मृत्यु का बंधन को भाव बंधन कहते हैं। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति इतनी आसान नहीं है। योगी जन और अनेक प्रकार के योगी, अनेक प्रकार का योग जो करते हैं ना, अष्टांग योग, राजयोग, ध्यान योग, वो बहुत ज़्यादा कष्ट और जन्म जन्मांतर के बाद में ऐसा मुक्ति प्राप्त करते हैं। और वो मुक्ति पर भी कैसे होती है? केवल ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य यानी एक रूपता प्राप्त करना, यही प्राप्त करते हैं। वो सबसे श्रेष्ठ नहीं माना गया है, वो आंशिक मुक्ति कहा गया है उसको, नो पार्शल मुक्ति। और इस भौतिक संसार में फिर भी ऐसे मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी लौट कर आने का डर बना रहता है। मैं बताऊंगा आपको कैसे होता है वो। किंतु भगवान के दिव्य देह की दिव्य प्रकृति को और उनके दिव्य कर्मों को, दिव्य लीलाओं को समझने मात्र से ही इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है, और उसे इस संसार में लौटने का बिल्कुल भी भय रहता नहीं है। नो टेंशन ऑफ रिटर्न। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम। एक बार वहाँ एंट्री किया तो रिटर्न का टेंशन नहीं है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान के अनंत रूप है, यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप है फिर भी वे अद्वैय भगवान है, मतलब एकमय भगवान है वो। इस तथ्य को विश्वासपूर्वक हमको समझना चाहिए, यद्यपि ये संसारी विद्वानों के और ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है। चलो यहाँ पर हम रुक जाते हैं। क्या कहा लास्ट लाइन, क्या कहा है कि ये सिंपल सी बात जो है वो दुनिया के योगियों को, मायावादियों को, निर्विशेषवादियों को समझ में नहीं आती है। उनके मन में एक ही होता है कि मुझे ज्योति में मर्ज हो जाना है। अभी भी हमारे हॉस्पिटल में एक व्यक्ति का देहांत हो गया, किसी के हस्बैंड का, तो उनकी पत्नी मुझे यही कह रही थी, मुझे भी मर्ज हो जाना है, वो मर्ज हो गए मुझे भी मर्ज होना है। किसी ने बताया उनको ज्योतिष कि तुम्हारा पति जो है वो परव्योम में चला गया है। परव्योम में मतलब इस भौतिक दुनिया के दायरे के बाहर चला गया वो, ही हैज़ गॉन टू द बियॉन्ड द मटेरियल रेल्म। तो किसी और एक क्या कहते हैं उसको, वो सिद्धि होती है थोड़ी सी, बहुत लोगों को होती है। उन्होंने कहा कि वो इस व्योम के परे चले गए हैं, वो अपने जीवन की परिपूर्णता प्राप्त कर चुके हैं। तो उनकी पत्नी भी कह रही है मुझे भी मर्ज होना है। मैं बोला मैडम मर्ज नहीं होना है आपको, आपको भगवान से मिलना है, भगवान की ज्योति में मर्ज नहीं होना है आपको। उससे क्या होता है, उससे हम दो नहीं बचते, हम एक ही एक हो जाते हैं। प्रेम कभी होता है जब दो होते हैं, है ना, दो व्यक्ति की मिनिमम जरूरत होती है प्रेम करने के लिए। दो व्यक्ति एक रूप हो गए तो किस पर प्रेम करेंगे, इसलिए हमेशा दो रहना जरूरी है। इसलिए हमारे जो मध्वाचार्य है ना, वो हमेशा ऐसे बैठते हैं, देखो उनकी मूर्ति में वैसे बैठे हुए सदैव बताते रहते हैं कि वी आर टू, वी आर नॉट वन। तभी जाकर दो होते हैं तभी प्रेम होता है। प्रेम का संबंध करने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। और ये जो ज्ञान योगी होते हैं ना, वो केवल भगवान की ज्योति में, ज्योति मतलब क्या, भगवान के शरीर से निकलने वाले जो तेज है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वो ब्लू रंग की होती है, इसलिए हमारा आकाश ब्लू रंग का है। लाल क्यों नहीं है, पीला क्यों नहीं है, हरा क्यों नहीं है, वाई? बिकॉज भगवान के शरीर से निकलने वाले जो आभा है वो नीले रंग की है, नील तेज है वो। और वो भगवान के धाम में और यहाँ पर भी सब जगह छाया हुआ है, ऑल एनकम्पासिंग, ऑल परवेडिंग, सर्वव्याप्त है वो। इसलिए उसका नीलिमा जो है वो आपको यहाँ के आकाश में भी दिखाई पड़ती है, भले वो मटेरियल वर्ल्ड है। रात में भी देखेंगे तो आपको ब्लू ही दिखेगा, वो ब्लैक है लेकिन आपको पता चलेगा कि ब्लू टिंज है उसके अंदर। सुबह उठेंगे तो पहला जब दिन आता है तो भी वो ब्लूइश ही होता है, फिर कुछ समय गोल्डन होता है, वापस आगे देखेंगे तो ब्लू दिखाई पड़ता है, क्योंकि बेसिक बैकग्राउंड ब्लू है उनका, क्योंकि भगवान के शरीर के द्वारा निकलने वाली जो आभा है वो ब्लू रंग की है। तो अभी ये सिंपल सी बात जो है वो हम सबको अगर समझ में आ गई ना तो ज़्यादा कुछ प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। क्या बताया गया है कि भगवान की लीलाओं की दिव्यता अगर हमको समझ में आई, भगवान की लीला में भगवान का जन्म भी आता है ना, तो जन्म और कर्म च में दिव्यम। दिव्यता का मतलब क्या होता है? दिव्यता का अर्थ होता है कि इसमें जन्म मृत्यु का लवलेश नहीं है। हम लोग जो काम करते हैं ना वो बंधन में काम करते हैं। आपने बच्चे को जन्म दिया है तो आपको देखना ही है बच्चे को, ऐसा नहीं है कि मैंने बच्चे को जन्म दिया तो मेरा मूड था अच्छा लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है छोड़ दो उसको, ऐसा होता है क्या? कई बार माँ को बोलते अरे क्यों जन्म दिया, मैंने पता नहीं था मुझे ये दिन रात ये उल्टी करेगा, टट्टी करेगा, पेशाब करेगा, बुखार आएगा, इसको उल्ट क्या क्या होगा, ये मुझे आइडिया नहीं था। मुझे लगा मैं वो एडवर्टाइजमेंट देखती थी, अच्छा बच्चा लेके गोद में कितना खेल रहे हैं, कितना अच्छा होता है माँ बनना, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड का एडवर्टाइजमेंट किसने किया नहीं था आज तक, है ना। तो हमारा जो कर्म है वो हम लोग पहले प्रेम से करते हैं, बाद में एकदम कर्तव्य की भावना से करते हैं, करना ही है क्या करें, लड़का बड़ा हो गया अभी शराब भी पीता है सिगरेट भी पीता है लेकिन मुझे खाना तो बनाना है क्योंकि मेरा बेटा है, क्या करें, प्रेम नहीं है अभी लेकिन कर्तव्य भावना है। तो भगवान का कर्म ऐसा नहीं रहता है, भगवान जो कर्म करते हैं वो हमेशा प्रेम से ही करते हैं, उसमें कोई बंधन, कोई फोर्स, कोई ऑब्लिगेशन, कोई मजबूरी ऐसे होती नहीं है, उसी को दिव्य कहते हैं। दिव्य वस्तु वो होती है जो किसी बंधन में बंधित नहीं होती है। हमारे सारे कर्म जो है वो जन्म कर्म बुढ़ापा बीमारी इसमें बंधे रहते हुए, हमारा हर काम जो है कभी सात्विक होता है, कभी राजसी होता है, कभी तामसी होता है। सात्विक मतलब क्या? झूठ नहीं बोलना, अच्छा, नम्रता, सहनशीलता, बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण होते ना वो, मिलनसार स्वभाव, प्रेमी, कोऑपरेशन, सहयोग, ये सब सत्व गुण है। रजोगुण का मतलब क्या? किसी भी कीमत कर मिलना चाहिए, चाहे किसी का नुकसान हो किसी का लाभ हो, आई डोंट केयर, मुझे मिलना चाहिए बस, उसको कहते हैं राजसी, पैशनेट, हर कीमत पर प्राप्त करना है उसको। और तामसी मतलब क्या? किसी का बुरा हो भी हमको परवाह नहीं है, और बुरा होप चलेगा उसके छाती पर पाँव रखे हमारी प्रगति करेंगे हम। तमोगुण का एक ही वर्णन कर सकते हैं, मेरी प्रगति के लिए मैं किसी को कुचल भी सकता हूँ, मुझे आगे बढ़ना है तो मैं किसी को कुचल भी सकता हूँ। तो ऐसे हमारे तीन प्रकार के काम होते हैं। तो सत्वगुण काम करता है वो, उसको लोग बोलते हैं कितना अच्छा आदमी, देखो सबको साथ में लेकर खुद भी खाता है, सबको भी खिलाने देता है, सबका कल्याण के साथ खुद का भी कल्याण कर लेता है। लेकिन भगवान का काम जो है वो सत्वगुण में भी निहित नहीं है, भगवान का काम जो है वो दिव्य गुण में निहित है। दिव्य गुण ये सत्वगुण के परे होता है, सत्वगुण के बहुत पास में होता है वो, लेकिन सत्वगुण यानी दिव्य गुण एक नहीं है। लोगों को लगता है सत्वगुण दिव्य गुण एक ही है, एक होता है सत्वगुण विशुद्ध सत्वगुण, दूसरा होता है जिसमें भगवान स्थित होते हैं। भगवान विशुद्ध सत्व में रहते हैं, और भगवान को अगर समझना है तो कम से कम सत्वगुण में आना चाहिए। जैसे कौन सा न्यूरोसर्जन बेस्ट है मुंबई में, ये समझने के लिए आपको कम से कम MBBS होना चाहिए। कारपेंटर या इंजीनियर को कैसा पता चलेगा हु इज द बेस्ट न्यूरोसर्जन, क्योंकि उस फील्ड में आप हो, कम से कम MBBS हो तो आपको पता चलेगा कि ये चार न्यूरोसर्जन में से बेस्ट कौन सा है। उसी तरह से भगवान विशुद्ध सत्वगुण है, वो क्या है वो समझने के लिए कम से कम आपको सत्वगुण में तो आना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग जप करते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, नशा नहीं करते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं और जुआ नहीं खेलते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते हैं, अच्छा सद्गुणों सद्व्यक्तियों का संतों का व्यवहार करने का प्रयास करते हैं, उससे क्या होता है सत्वगुण का निर्माण होता है, मनुष्य जीवन की शुरुआत होती है। और फिर धीरे धीरे भगवान क्या है ये हमको समझ में आता है। MBBS होने के बाद में समझ में आता है कि मेडिसिन क्या है, सर्जरी क्या है, गायनेकोलॉजी क्या है, न्यूरोसर्जरी क्या है, कार्डियोलॉजी क्या है, ये धीरे धीरे समझ में आता है। लेकिन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कुछ, वो खाली एनाटॉमी फिजियोलॉजी सीख रहा है। वैसे ही भक्ति में होता है, एक होता है बेसिक फाउंडेशन, उसके आगे होती है प्रगति, उसके आगे एडवांस नॉलेज, उसके आगे फिर भगवान कौन है, उनकी लीला क्या है, वो कहाँ जन्म लेते हैं, कहाँ से कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं। अभी आज का जो उत्सव है ना, वो रास पूर्णिमा का उत्सव है, सब लोगों को पता है आज क्या किया भगवान ने, रास रचाया। लेकिन उसका एक अंडरस्टैंडिंग ऐसा है, देखो मैं आपको एकदम सब स्पष्ट बता रहा हूँ, समाज में क्या अंडरस्टैंडिंग है उसका, सबको पता है कि आज के दिन भगवान ने रासलीला किया था, बीच रात में गोपियों को बुलाया था बंसी बजा के और फुल नाइट रासलीला किया था। तो कई धर्म के लोग और कई हमारे धर्म के लोग क्या कहते हैं कि भगवान ने बड़ा इमोरल काम किया है, जो नीति मूल्यों को पकड़ के नहीं किया उन्होंने। नीति मूल्य क्या कहते हैं, आपको जो भी कुछ करना है प्रेम का संबंध अपनी पत्नी से करो, और वो प्राइवेट में करो, दरवाज़ा बंद करके घर में करो, ये बहुत गुप्त काम है ना, थोड़ी ये पब्लिक में करने, बंद हो गया। हरे कृष्णा, तो आम तौर पर लोग बंद हो गया प्रभु जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। कोई बात नहीं, तब तक ऐसे ही बोल लेते हैं।
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी बंद हो गया। हरे कृष्णा, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ तो बहुत लोग सोचते हैं कि ये इमोरल काम है, ये अनीतिपूर्वक काम है, ये आम आदमी जो सज्जन है वो ऐसा नहीं करता है कभी भी, और ये तो भगवान कहलाते हैं अपने आप को, और भगवान होते हुए भी एक तो बीच रात में किसी को फोन, मतलब मोबाइल है सॉरी, मुरली बजा के बुलाया मुरली बजाई, वहाँ का उस समय का मोबाइल मुरली था, जब भगवान मुरली बजाते थे सब गोपियों को अपना अपना मैसेज मिलता था, वो भी बीच रात में बजाई, दिन में नहीं बजाई, और बीच रात में जो जो लोग भाग के आई गोपियाँ, कितनी गोपियाँ आई होंगी बताइए, किसी को अंदाज है, एनी आइडिया, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 25 करोड़ों गोपियाँ आई, करोड़ों गोपियाँ, और सब कुछ छोड़ के आई, कोई अपने बच्चों को दूध पिला रहे थे उसको छोड़ के आए, कोई पति को खाना खिला रहे थे उसको छोड़ के आए। तो आप लोग कहेंगे कि ये क्या धर्म है, तो पूरी पूरी इमोरल एक्टिविटी है, इनके तरफ से भी इनके तरफ से भी, लॉजिकली आप ऐसा बोल सकते हैं, थोड़ा सा आवाज़ कम करना प्रभु जी, बस घूम रहा है, थोड़ा सा कम करना। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ को आप अलग अलग एंगल से देख सकते हो। सर दुर्योधन ने भगवान को देखा वो शांति सभा में, वो दूत बनकर आए थे ना, मैसेंजर बनकर आए थे ना, नेगोशिएशन के लिए आए थे कि कम से कम 5 गांव दे दो, युद्ध बुद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो उस समय दुर्योधन को क्या लगा कि ये बहुत चेटुक है, चेटुक यानी ही इज अ मैजिशियन, ब्लैक मैजिशियन, इनके पास बहुत गलत विद्या है और ये कुछ भी कर सकते हैं, इसको अरेस्ट करो। अपने सैनिक भेजे दुर्योधन ने भगवान को अरेस्ट करने के लिए, तो भगवान ने विराट रूप दिखाया, तभी भी समझ में नहीं आया कि ये भगवान है, डर लगा उसको लेकिन समझ में नहीं आया भगवान है। लेकिन भीष्मदेव को, पांडवों को, द्रोणाचार्य को, सबको समझ में आया था कि ये भगवान है, और उनका प्रेम बढ़ गया उनको देख के, और दुर्योधन की ईर्ष्या जो थी वो बढ़ गई भगवान को देख के, क्योंकि दुर्योधन का भगवान को देखने का तरीका अलग था, वो ईर्ष्या हाँ एनवी से भगवान को देखता था, और पांडव भीष्मदेव सब भगवान को प्रेम से देखते थे, इसलिए उनको नहीं ऐसा लगा कि ये ब्लैक मैजिशियन है, ये चेटुक है, ये तोड़ना करने वाला व्यक्ति, ऐसा लगा नहीं उनको। तो सेम वे शिशुपाल ने भगवान को देखा, और वो युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में दुनिया सब लोग भगवान का गौरव कर रहे हैं, अग्र पूजा का स्थान दे रहे हैं, उसका पूजन हुआ जा रहा है, शिशुपाल का जो गुस्सा है, जो ईर्ष्या है, जो एनवी है, हाँ, जो द्वेष है, वो ऐसा दिन दुगुना हजारों गुना बढ़ रहा है, वो धराधड़ गालियां पक रहा है भगवान से, जो भगवान सबके लिए पूजनीय है, उनका पूजन भी हो रहा है, उन्हीं को देख के वो हजारों गालियां पक रहे हैं। क्या फर्क है इसके अंदर, भगवान तो भगवान ही है, वो थोड़ी बदले हुए हैं, डिफरेंट है उसके लिए, लेकिन इनका देखने का तरीका डिफरेंट है। वो जन्म से ही भगवान का द्वेषी था, ऐसा गोद में से ही, इसलिए भगवान जैसे है उनको देखने के तरीके अलग हो सकते हैं, वैसे भगवान की लीला को भी देखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपको पता लगता है कि भगवान इमोरल है, बहुत अनीति वाले, नीति वाले नहीं है, नीति मूल्यों को तोड़ने वाले हैं, अरे चोरी भी करते हैं वो, भगवान कभी चोरी करता है क्या? कैसे भगवान है ये, यहाँ गया मक्खन चोरे, यहाँ गया वो चोरा, यहाँ कपड़े चोरे, क्या क्या चोरी करते रहते हैं, इज ही गॉड? नहीं, ये प्लेफुल प्लेफुल बॉय है, एक साधारण बालक है, पता नहीं लोग उसका इतना उदो उदो क्यों करते हैं, सब जगह उसका ही गुणगान करते रहते हैं। अरे रण से भी एक बार भाग गया था, वो वीर भी नहीं है, गाय चराता है, गोबर गोमूत्र में हमेशा लिपटा रहता है, उसको क्यों भगवान मानते हैं आप लोग? ऐसा लोग कहते हैं, इसलिए यहां पर बताया गया है, जब तक हम एक विशिष्ट आध्यात्मिक स्तर पर नहीं आते हैं तब तक हमको कृष्ण को समझना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। एक और उसका नियम है, नवम स्कंद में, भागवत में, 9th कैंटो में प्रभु रामचंद्र का चरित्र का उल्लेख किया गया है, विस्तार रूप में नहीं, क्योंकि वो 24,000 श्लोक कैसे बताएंगे, वो टाइम तो नहीं उनका इतना, सुखदेव जी के पास इतना टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एज अ मैंडेटरी रूल एक अनिवार्य रूप से रामायण का उल्लेख किया, और वो विस्तार में करने वाले थे तो उनको रोका गया कि भाई समय बहुत कम है, परिषद मान केवल 7 दिन है और इसके 18,000 श्लोक हैं, उसमें 24,000 कहाँ से लाएंगे। तो उन्होंने उसका वाइंड अप किया पूरा और 2-3 श्लोक में पूरा रामायण बता दिया, लेकिन फिर भी उसको बताया, उसको अवॉइड नहीं किया। कारण क्या उसका? उसका कारण यह है कि प्रभु रामचंद्र के द्वारा दी गई मर्यादाओं को पालन किए बिना श्री कृष्ण का चरित्र समझना नामुमकिन है। यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण टिल वी फॉलो दी गाइडलाइंस एंड एग्जाम्पल सेट बाय लॉर्ड रामचंद्र। रामचंद्र की दी हुई मर्यादाओं का पालन खुद किए बिना प्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का अवलोकन समझना, आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि प्रभु रामचंद्र में और प्रभु श्री कृष्ण में बहुत अंतर है। है वो एक ही भगवान, एक ही व्यक्ति घर पे आता है, अपनी वर्दी उतारता है और पति और पिताजी बनकर घर पे रहता है, लेकिन वही 10 बजे सुबह पुलिस की वर्दी पहनकर थाने में जाता है, तो थाने में वो डिफरेंट काम करता है, वहाँ पर वो बच्चे को गोद में खेलता नहीं है, लेकिन वहाँ पर केवल गुनहगार को दंड देता है और कठोर दिखाई पड़ता है वो, कभी बहुत पीटता है किसी को, कभी वो क्या हैंडकफ पहना देता है, हाथ कड़ी पहना देता है, और घर पे आके फिर बेबी को चॉकलेट खिलाता है ना, तभी वर्दी नहीं पहनता है। तो एक ही व्यक्ति है लेकिन दो रोल में अपना काम कर रहा है, कई रोल में करता है लेकिन ये दो मेन रोल उसके हैं। उसी प्रकार से वो एक ही व्यक्ति है भगवान, लेकिन जब प्रभु रामचंद्र के रूप में आते हैं तो हर जगह आदर्श 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 सब आदर्श ही करता है, पिता के रूप में आदर्श, पुत्र के रूप में आदर्श, राजा के रूप में आदर्श, भाई के रूप में आदर्श, एक हर एक रूप में आदर्श। इसलिए प्रभु रामचंद्र का चरित्र जो है वो अनुकरणीय है, इज फॉलोएबल, यू कैन फॉलो एवरी सिंगल थिंग। और रामायण के अंदर बाकी सब लोग भी आदर्श है, सीता आदर्श पत्नी है, लक्ष्मण आदर्श भाई है, भरत भी आदर्श भाई है, शत्रुघ्न भी आदर्श भाई है, और कौशल्या आदर्श माता है, एवरीबॉडी इज आदर्श। उसमें हीरो हीरो का एक ग्रुप है, विलन का एक ग्रुप है, वो बात अलग है, लेकिन जो राम का ग्रुप है वो सब आदर्श ग्रुप है। और वो जब तक हमको समझ में नहीं आएगा और जब तक हम उसको अपने जीवन में उतारना आरंभ नहीं करेंगे, श्री कृष्ण को समझना मुश्किल है। इसीलिए नवम स्कंद में कुछ लोग क्यों न हो, प्रभु रामचंद्र का उल्लेख करने के बाद ही दशम स्कंद में कृष्ण चरित्र वर्णन करने का आरंभ किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और वो भी पहले जन्म की लीला, बाल लीला, गौचारण लीला, ऐसे करके करके हमको प्रिपेयर किया गया है। क्योंकि बाल लीला में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, समझो वो यशोदा मैया भगवान के मोती से दांत आते हुए देख रही है, तो कोई आपका ऑब्जेक्शन नहीं उसमें, कोई नीति का काम नहीं है, ये नीति के विरुद्ध है कि यशोदा मैया भगवान के मुंह में दांत दिख रही है, ऐसा कोई बोलेगा नहीं। नीति के विरुद्ध या साधारण मन शक्ति के विरुद्ध का काम जो है वो शुरू कब होता है, जब भगवान ने गिरिराज को उठाया। तो कृष्ण कैसे उठा, हाउ इट इज पॉसिबल, एक 7 साल का बच्चा एक पहाड़ कैसे उठा सकता है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, बच्चों को रिझाने के लिए बनाई गई है, किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने सब स्टोरी लिखा गया है एज अ नॉवेल, ये सब झूठ है। लेकिन वो 7 साल के उम्र के बाद में वर्णन किया है, उसके पहले केवल वो जन्म लेना, रेंगना, खेलना, इधर कूदना, गौशाला में जाना और पेट के बल पर गोबर गोमूत्र के मिश्रण में स्केटिंग करना, वो सब कुछ अच्छा लगता है सुनने के लिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उसके अंदर। तो क्या किया जा रहा है, वो आपके मन की, हमारे मन की तैयारी की जा रही है समझने के लिए। और सडनली वर्षा होती है और सडनली पर्वत को उठा लेते, तो एक मज़ेदार बात है। वो भगवान अभी जो बहुत भयंकर वर्षा हो रही है, सब लोग परेशान हैं, सबकी गाय बैल भी पानी में बहते जा रहे हैं, घर भी बहते जा रहा है किसी, बहुत लोगों का सब ध्वस्त होते जा रहा है, उध्वंस हो रहा है सब जगह पे। इसमें कृष्ण आते हैं, तो लोगों को बोलना चाहिए ना उनको ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम अगर इंद्र की पूजा को विरोध नहीं करते, और ये नंद बाबा भी हमारे कितने देखो कैसे हैं, पिताजी इतने बुजुर्ग उम्र के हैं फिर भी बच्चे की बात मानकर इतना बड़ा रिवाज तोड़ देते हैं, अच्छा नहीं किया उन्होंने ये सब, लेकिन मूल कारण तुम हो, तुमने आकर जिद किया, वो बेचारे पुत्र के प्रेम में वश थे इसलिए उन्होंने बेचारे तुम्हारा कहना माना, और देखो उसका परिणाम क्या हुआ। ऐसे हम लोग कहते, उसमें से कोई नहीं कह रहा ऐसा, ओनली हम लोग कह रहे। तो बोले चलो मेरे साथ, तो अभी ऐसा नहीं बोला उन्होंने, अभी कहाँ ले जा रहे हो, ऑलरेडी इतना तुमने किया तो उसका फल भोग रहे, अभी कहाँ ले जा रहे हो तुम, नहीं पीछे चले गए उसके वो, और वो आगे चले गए गोवर्धन के बीच में। तो अभी क्या करोगे, तो बोलते हैं कि अभी मैं ये पर्वत को उठाऊंगा। आपके बेटे का नाम क्या है, हाँ श्यामानंद, अभी वो आपके गोद में सो रहा है, अचानक बोलेगा मम्मी मैं भी यहाँ का गोवर्धन को उठाऊंगा, तो आप क्या बोलेंगे उसको, पता तो सो जा तो नींद आ रही है शायद है ना, मतलब आपको पता है वो बच्चा है वो क्या पर्वत उठाएगा, वो तो थोड़ा सा वजन एक थैली भी उठा नहीं पाएगा वो मेरी तरफ से, और बोल रहा है मैं पहाड़ उठाऊंगा, तो बच्चों को बता रहे कि पहाड़ उठाऊंगा, और बच्चे कह रहे हैं कि कैसे कैसे हो, कैसे हम लोग विश्वास करें, तो उन्हें पता है क्या क्या कितने लोगों को पता है क्या क्या, एक बड़ा कदम का पेड़ है। अभी आपने कदम का पेड़ देखा है क्या, मुंबई में तो कदम का पेड़ कहाँ दिखाई पड़ता है, हमने लगाया हमारे कैंपस में लगाया है वृंदावन से लाकर, लेकिन वो फिर भी वृंदावन जैसा बड़ा नहीं हुआ है, वो इतना मेरे आकार में हाथ पकड़ूंगा ना तो अभी इतना है, अभी वो हो गया 5 साल उसको भी इतना है, लेकिन वृंदावन के जो होते ना वो इतने बड़े ये मेरे हाथ में भी नहीं आएंगे, वो इतने विस्तार में। कालियाघाट का पेड़ देखा आपने कदम का, इतना बड़ा, उसको ऐसा गोल घूम के हाथ लगाना पड़ता है, एक हाथ में नहीं पकड़ सकते उसको, मेरे घर वाला जो है मैं इसको ऐसे गले लगा सकता हूँ, इतना बड़ा कदम पक पेड़ उधर था एक, उसको ना 7 साल के बालक ने ऐसा उखाड़ लिया पूरा। हम लोग इतने बड़े व्यक्ति हैं लेकिन इतना पेड़ को उखाड़ सकते क्या, भगवान ने उसको उखाड़ लिया, और उखाड़ लिया तो उखाड़ लिया, आप बोलेंगे क्या मुमकिन है क्या, सब बचपन की बातें करते हैं आप बेकार की, भगवान ने उसको उखाड़ा और उसको ना ऐसा कपड़े जैसा निचोड़ दिया पूरा सबके आंखों के सामने, तब बच्चों को लगा हाँ तुम कर सकते हो, या नाउ आई बिलीव दैट यू कैन डू इट। और आपको लगता है कि ये सब झूठ पाते हैं, तो आज भी आइए मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ, वहाँ पर वो पेड़ अभी भी है, उसका जो पार्ट है ना, पेड़ तो अभी गुजर गया है लेकिन जो निचला हुआ पार्ट है ना उसको वार्निश करके कबर्ड में उन्होंने म्यूजियम के रूप में रखा हुआ है, आपको दिखाया है हम लोग ने, वो पेठा गाँव में है, चंद्र सरोवर के पास में है, जहाँ पर भगवान ने प्रविष्ट वन यानी भूमि के अंदर प्रवेश करके फिर पर्वत को उठाया था, इसलिए उसका नाम है प्रविष्ट, प्रवेश किया हुआ वन, उसके अंदर गुफा है, उसके अंदर आके भगवान ने उसको उठाया था। उसके पहले ये ग्वाल बालों को ऐसा तसल्ली दिया था, डोंट वरी मैं ये कर सकता हूँ, आपको ऐसा मत समझो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, और फिर जाके एक्चुअली उठाया, तब जाकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये सही है कि गलत है कि ऐसा ही बनाया गया है। इसलिए प्रभु रामचंद्र का चरित्र पढ़ना जरूरी है, ताकि आपको पता चले उनके कितने ऐश्वर्य है, कितनी कलाएं हैं उनके अंदर, क्या क्या किया उन्होंने 45 मिनट्स के अंदर 14,000 सैनिकों को खर दूषण त्रिशिर राक्षस के साथ 45 मिनट्स के अंदर ख़त्म कर दिया उन्होंने। ये पंखा है ना, अभी पंखे सब बंद है, जब पंखा चलता है ना, चालू करेंगे ना, तो आपको पूछेंगे माता जी कितने पत्ते हैं उसके अंदर, हाउ मेनी ब्लेड्स आर देयर, कैन यू टेल मी, नो, बिकॉज यू ओनली सी वन फेंट सर्कल जो घूम रहा है, इतना फास्ट घूम रहा है कि आपको लगेगा नहीं कि वो 3 है कि 4 है कि 5 है, यू डोंट नो, बंद होने के बाद पता चलेगा कि 3 है। वैसे प्रभु का बाण यहां से कब निकल रहा है, कब धनुष को लगा रहा है, कब खींच रहे हैं, कब छोड़ रहे हैं, कब निकल रहे हैं, एक पंखे की तरह उनका हाथ चल रहा था, इतना स्पीड, और बिल्कुल पौने घंटे में 14,000 सैनिक और 3 महारथियों को खत्म कर दिया उन्होंने। वे शक्तिशाली भगवान अभी अपने माता पिताओं का निरपेक्ष निस्वार्थ प्रेम अनुभव करने के लिए एक बालक बन के आए हैं ब्रज भूमि में। जब राम बनकर आए थे सबको पता था कि ये भगवान है, लेकिन कैसा होता है ना, भगवान को भी ऐसा हर समय भगवान 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 करके भी उनको बोर हो जाता है, कहीं भी एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर वो नॉर्मल आदमी की तरह जिए। जैसे हमारे इंडिया के क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, समझो उनको एक बढ़िया सॉक्स लेना है, 2 जोड़ी लेना है, बहुत दिन से सॉक्स नहीं लिया, तो वो इंडिया के किसी भी दुकान में सॉक्स नहीं ले सकते, बताओ क्यों? अरे जहाँ जाएगा वहाँ पर कैमरामैन फोटोग्राफर बाइट लेने के लिए पहुँच जाएंगे, स्पॉटेड सचिन तेंदुलकर इन दिस पर्टिकुलर मॉल, तो क्या लेगा वो अपना, हम कैसे बोलते हैं ये लाल रंग का नहीं पीला रंग का दिखाओ, इसमें कोई अच्छा वैरायटी है क्या, डिजाइन वाला है क्या, ऐसा हम आनंद लेते हैं बहुत, उसके 50 सॉक्स निकाल के देखते हैं और एक सॉक्स लेते हैं, वो मज़ा जो है वो तेंदुलकर को नहीं मिलेगा। और अगर उसको मज़ा लेना है तो क्या करना पड़ेगा उसको, उसको उस देश में जाना पड़ेगा जहाँ लोग क्रिकेट नहीं खेलते, तो नोबडी नोज हिम देयर, तो फिर वो कहीं भी रास्ते पे घूम सकता है आराम से, इधर उधर 50 जोड़ी सॉक्स देख सकता है, 2 जोड़ी खरीद सकता है, जूता भी ऐसा ही कर सकता है, जो चाहे टी शर्ट पैंट जो है सब शॉपिंग कर सकता है, क्योंकि वो वहाँ पर मिस्टर नोबडी है, और उसको भी वो कुछ समय के लिए मिस्टर नोबडी रहना अच्छा लगता है। अरे हर समय फोटोग्राफर, हर समय न्यूज़, हर समय टीवी बाइट, हर समय कैसा लगता है आपको हमारा दुकान, सॉक्स ऐसे लगा, इज़ नॉट हैप्पी यू नो। तो भगवान को भी अभी देखो, वैकुंठ में जाओ सब जगह ईश्वर परम कृष्णा ओम सहस्र शीर्षा सहस्रपाद, हर जगह पुरुष सूक्त ये सूक्त वो सूक्त विष्णु सूक्त, सब जगह प्रार्थना ब्रह्म संहिता गाई जा रही है। वो कहते हैं वैकुंठ में ऐसा कोई समय नहीं है, कोई क्षण नहीं है जहाँ पर भगवान की स्तुति गायन नहीं हो रहा है। 24/7 इंटरनल टाइम शाश्वत काल के लिए भगवान का गौरव गौरव हो रहा है। अभी आपको ना यहाँ पर तो गौरव सुनने की आदत नहीं, क्योंकि सब लोग गालियाँ सुनाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आपको समझो कि आपको सब लोग गौरव ही कर रहे हैं तो आपको भी बाद में बोर होने लगेगा। अरे हर समय वही, अभी कभी कोई आपको गिफ्ट ही नहीं दे रहा है तो आपको किसी ने गिफ्ट दिया, लोग मुझे गिफ्ट दिया, मुझे गिफ्ट दिया, 50 लोगों को दिखाएंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा आप जहाँ जाएंगे आप पर गिफ्ट की वर्षाओं किया जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आपने देखा मोदी जी को कैसे करते हैं, ऐसा लेते तुरंत दे देते हैं, ऐसा लेते तुरंत दे देते हैं, देखते भी नहीं वो क्या दिया है क्या नहीं दिया, ऐसा लेके तुरंत दे देते हैं और कभी उसको बाद में मुड़ के देखते नहीं है। इतने सारे हजारों लाखों गिफ्ट आ रहे हैं, किसको देखेंगे, ये साड़ी अच्छी लगी मुझे, मेरी बीवी को दूंगा या मेरी बहन को दूंगा या माँ को दूंगा, अरे नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो प्रचुर मात्रा में हो रहा है ना। उसी तरह से भगवान को वो बार बार स्तुति गायन करने से भी बोर हो जाता है, उनको लगता है कि ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर मुझे कोई जानता नहीं है कि मैं भगवान हूं, इसलिए वृंदावन में आते हैं। और ये रहस्य आपको समझना पता जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। उनके लिए, उनको भी अपने लिए एक स्पेस चाहिए, स्पेस वेर ही कैन लिव ऑन हिज ओन, उसको जो करना है मर्जी वो कर सकता है, चोरी करना है कर सकता है, किसी को छेड़ना है छेड़ सकता है, किसी को लुका छपी करने कर सकता है, यू वॉन्ट फ्रीडम ना। अभी कभी कभी यू हैव टू बी एज योर सेल्फ, टू बी योर सेल्फ यू नो ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ, वो मौका ही नहीं मिलता है। मैं हमेशा किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का ये हॉस्पिटल का डायरेक्टर, वो देश का प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री, इसी के रूप से जिया, मैंने मेरे रूप से जीवन दिया ही नहीं। अब मुझे टिम्बकटू आइलैंड में जाना है और अपने आप में जीना है, पेड़ से फल तोड़ के खाना है, बचपन में पत्थर मार के आम तोड़े थे, वो पत्थर मार के आम तोड़कर वो आम खाना है, कच्चा खट्टा खट्टा, वो कब मिलेगा मौका मुझे, जो मुझे कोई देख नहीं रहा होगा कि 60 साल का आदमी पत्थर तोड़ के आम खा रहे हैं, लेकिन उसमें भी आनंद होता है, अपनापन, अपना होने का आनंद होता है ना, आई एम टू माई सेल्फ। इसलिए भगवान वृंदावन में आते हैं कि उनको भी स्पेस चाहिए। इसमें से किसी को पता नहीं है वो भगवान है करके, ना यशोदा को पता है, ना राधा रानी को पता है, ना गोपियों को पता है, ना ग्वाल बालों को पता है, ना गैयाओं को पता है, किसी को पता नहीं है। और पता होता भी है तो भगवान उसको तुरंत फेल कर देते हैं। कैसे? जैसे मुंह खोला उन्होंने, ब्रह्मांड दिखा दिया, है ना, सबको मालूम है ना, खाना ने माटी खाई, लोगों ने कंप्लेंट की, दाऊ ने कंप्लेंट की, आज तो खाना ने माटी खाई है, रोज खाता है लेकिन बहुत कमाली कर दिया उसने। तो बोले नहीं नहीं, वो तो दो पार्टी में हम लोग ने डिवाइड करके गेम खेला था, आज दाऊ जी की पार्टी हार गई इसलिए बड़े गुस्से में है वो, इसलिए मुझे तंग करना चाहते हैं इसलिए आपको कंप्लेंट कर रहे हैं। तुमने माटी खाई? नहीं मैंने माटी नहीं खाई। नहीं मैया माटी खाई है इसने। तो बोलते अभी इतना बहस करने की जरूरत क्या है, मुंह खोल को देख लो। तो मुंह खोला उन्होंने तो भगवान ने उनको मुंह ब्रह्मांड दिखाया। मतलब अभी तक किसी को पता नहीं है, मैया को पता नहीं है कि भगवान है, और अभी भगवान ने उनको कुछ चकमा दिखाने की कोशिश किया तो मैया एकदम चौंक गई, अरे मेरा बच्चा बीमार तो नहीं हो गया, उसके मुंह में टीवी दिख रहा है मुझे फिल्म चल रही है मूवी में, मुंह में, और मैं भी अपने आप को देख रही हूँ, मैं भी दिख रही हूँ कि मैं भी उसके मुंह में देख रही हूँ, ये मुंह के अंदर दिखाई पड़ रहा है, ये क्या अद्भुत चमत्कार है, या तो मैं बीमार हो गई हूँ या तो ये बीमार हो गया, दोनों में से कुछ गड़बड़ है। और कुछ देर बाद समझ में आया, अरे ये तो भगवान है, इसके मुंह में ब्रह्मांड है, यानी ये भगवान है, लेकिन ये तो मेरा बालक है, नहीं ये तो भगवान है, ये तो मेरा बालक है, ये तो मेरा भगवान है, दिमाग एकदम चकरा गया उसका। तो बोले हो सकता है ये भगवान ही है, तुरंत ओम सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र पाद शुरू कर दिया प्रार्थना करना। और भगवान को लगा, अरे मैं तो यहाँ पर अपने स्पेस को एंजॉय करने के लिए आया था, और यहाँ पर भी वही हो रहा है जो वैकुंठ में हो रहा है। बंद, मुंह बंद कर दिया। जैसे मुंह बंद कर दिया ना, सब मैया भूल गई कि मुंह के अंदर क्या देखा था। अभी आप बोलेंगे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी मुझे आप देख रहे हो कि मैंने भाई मे बी लिटिल गोल्डन कलर का कुर्ता पहना है, लाइट बेज कलर का शॉल पहना है, और मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा तो आप 2 मिनट में तो भूलने जाएंगे ना कि मैंने क्या पहना था। शाम को अगर कुछ दूसरा ड्रेस पहन के आया तो आप सुबह का ड्रेस भूल सकते हो, लेकिन 2 मिनट में कैसे भूलेंगे? तो 2 मिनट में मैया कैसे भूल सकती है कि अंदर पेट मुंह में क्या देखा? उसका कारण है कि भगवान जब अपने स्पेस में आते हैं ना तो पूरी व्यवस्था करके आते हैं। उनके पास में ना अनंत माया है, अनंत माया शक्ति है। एक माया शक्ति का नाम आप नोट कर लेना, कोई भूलना नहीं उसको, उसका नाम है जगन मोहिनी माया। क्या नाम है उसका? जगन मोहिनी माया। इसका भागवत में उल्लेख है, श्लोक है उसका। वो माया का प्रयोग कब करते हैं भगवान? दूसरों के दिमाग से ये ज्ञान छीन लेने के लिए कि मैं भगवान हूं। मतलब आपको लगता है कि मैं भगवान हूं तो वो जगन मोहिनी माया से वो निकाल देगा, डिलीट करेगा, डिलीट। इट्स अ डिलीटिंग पावर इन योर ब्रेन दैट गॉड इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। इट समझ में आपका है? तो जिस जिसको वृंदावन धाम में जन्म देते हैं वो सबके ऊपर जगन मोहिनी माया का प्रयोग करके उसका वो नॉलेज छीन लेते हैं कि मैं भगवान हूं। फिर आपको पता नहीं कि वो भगवान है तो वो फ्री हो गया, अभी जैसा व्यवहार करना है वैसा, और कोई ताने भी नहीं मार रहा है, बच्चा है खेल रहा है, मक्खन चोरी कर रहा है, तो क्या वो अच्छा है, हमको अच्छा लगता है, ये सब प्रकार कर ले। तो वो जगन मोहिनी माया से यशोदा का जो कुछ क्षण का ज्ञान था, अरे तो भगवान है, छीन लिया। फिर उसको क्या लगा, ये तो बच्चा है मेरा, स्माइल दे दिया तो सब भूल गए, अपना उसको छाती पे लगाया और दूध पिलाया। इसी माया का और एक जगह भी प्रयोग किया भगवान ने, बताओ हमको। देखो भगवान ने कंस को मारा, माता पिता को रिहा कर दिया, अपने घर चले गए, उग्रसेन को फ्री कर दिया, वो अपने घर चले गए। फिर अगले दिन भगवान अपने माता पिता को मिलने गए। अभी माता पिता को मिलने गए मतलब किसको? वसुदेव देवकी को मिलने गए, है ना। और अभी झुककर दोनों भैया चरण स्पर्श कर रहे हैं, और भगवान को क्या उद्देश्य इच्छा है? ये हमको हमको उठकर गले लगाए, बेटा बेटा कहकर गले लगाए और सर चूमे, सर सूंघे, सर चूमे। लेकिन माता पिता को कैसा है, उनको पता है कि ये भगवान है, क्योंकि जन्म होते ही 4 भुजाला रूप दिखाया था ना, और बताया था कि मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आया हूँ, तुम्हें कंस को डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसका वध करने वाला हूँ। अभी मैं बताऊं ऐसे करो, लेकिन आगे मैं उसका वध करूंगा। आगे पहले भी किया है, मैं वामन के रूप में भी आया था और उसके रूप पहले भी आया था मैं। क्या नाम था उसका? सुतपा और प्रश्नी, और प्रश्नी गर्भ के रूप में भी मैं आया था तुम्हारा बच्चा बनकर, और अभी भी तुम्हारा बालक बनकर आया हूँ। डोंट वरी अबाउट इट, ऐसा करके पहले ही बता दिया था कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि उनको कंस का बड़ा भय था, इसलिए उन्होंने पहले ही बताया कि कंस को डरने की जरूरत नहीं है, मैं उसका इलाज करूँगा। तो उनको याद था वो, तो जब कृष्ण बलराम दोनों आके चरण छू रहे हैं तो बोले भगवान चरण छू रहे हैं, तो उनको बड़ा संकोच हो रहा है, और इनको दोनों को लग रहा है हम थोड़ी भगवान बनकर यहाँ पर आए, हमको तो माता गले गले मिलने के लिए हम लोग आए, और उनको संकोच क्यों हो रहा है कि ये भगवान है। तो उस समय सुखदेव जी ने वो श्लोक बताया है कि उन्होंने उस समय जगन मोहिनी माया का प्रयोग करके वसुदेव देवकी के मन से वो ज्ञान छीन लिया कि वो भगवान है, और जैसे ही डिलीट हो गया ना वो नॉलेज, तुरंत उन्होंने उठाया और गले लगाया और अश्रु बहाए और चुम्मा लिया, उनका सर सूंघा और चुम्मा लिया और बहुत प्रेम किया। तो भगवान के साथ में प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए ही एक बाधा है बड़ी, कौन सी? भगवान को भगवान समझना। समझ में आया आपको? इफ यू अंडरस्टैंड गॉड एज गॉड, देयर इज अ हिंड्रेंस बिटवीन एक्सप्रेशन ऑफ योर लव टू हिम। आपके उनके प्रति प्रेम व्यक्त करने के मार्ग में ये बाधा है अगर आप उनको भगवान समझते हो तो। इसलिए जन्म कर्म चमे दिव्यम, ये दिव्य कर्म है। कब समझेगा आपको? जब समझेगा कि ये भगवान है, लेकिन स्वेच्छा से लोगों के मन से भगवान होने का ज्ञान निकाल कर ऐसी चटपटी लीला कर रहे हैं तो सबको आनंद आ रहा है। अरे ऐसो चटक मटक खो ठाकुर, तीनों लोग कोई हो में नाए। ऐसा ठाकुर जो है ना वो तीन लोग में भी कहीं मिलेगा नहीं आपको। तब हमको समझ में आएगा कि ये सब दिव्य है, साधारण बात नहीं है। कोई साधारण बच्चा तो पेंसिल चोरी करके लेके आया, उसके घर से आपने डांटा उसको, दोबारा करोगे तो मारूंगी, दोबारा भी लेके आया करके तो फिर पीटा उसको, तो लोग वैसा ही है। इसके घर में एक मक्खन चोरी करने गया, उसने आके कंप्लेंट किया, डांटा उसको, फिर उसके घर में चोरी करने गया, फिर डांटा उसको, फिर बहुत डांटा, फिर बांध दिया उसको, तो बहुत ज़्यादा उद्वे हो गए हो। ठीक है, ये तो ऑर्डिनरी चाइल्ड है, लेकिन वो ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अद्वितीय व्यक्ति, एक सामान्य बालक बन के ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए आया है वो। ये समझना बहुत जरूरी है, और ऐसे भगवान की लीलाओं को इस तरह समझेंगे ना तो फिर हम सब लोग वो लीला सुनकर भगवत धाम चले जाएंगे। अभी ये जो ग्वाल बाल है ना, एक बार वरुण वरुण देव के एक सैनिक ने भगवान को नंद बाबा को अरेस्ट किया, एकादशी के दूसरी रात को, कहते 3 बजे के पहले ही पानी में उतरे, जो नहीं उतरना चाहिए नियम से, प्रथम प्रहर 3 बजे के बाद में शुरू होता है, तो 3 बजे के बाद में पानी में उतर के स्नान करना चाहिए, किसी भी पौंड में, नदी में, समुद्र में 12 से 3 बजे तक स्नान नहीं करना चाहिए, सर नियम है, राक्षस प्रहर है। तो वो कैलकुलेशन करके वो वरुण के सैनिक ने उनको अरेस्ट कर दिया, वरुण लोक में जाके अरेस्ट करके बंद बंद कर दिया उनको। तो कृष्ण भगवान गए वरुण लोक में, अभी वरुण के लिए वो जानते हैं कि ये कृष्ण भगवान है, ब्रजवासियों के लिए पता नहीं है। समझ में आपको आया? एक ग्रुप को पता ही नहीं है कि ये कौन है, लेकिन जब वरुण के लोक में गए तो वरुण तो पूरा दंडवत प्रणाम करके स्तुति गायन हार वार पहना रहा है, पाद प्रक्षालन कर रहा है, चरण धो रहा है उनके, और कह रहे हैं माफ़ करना, मैंने पता नहीं था कि आपके पिताजी है, सॉरी मैं उनको छोड़ता हूँ, उनका भी सम्मान किया, उनके भी पैर धोए, उनका भी हार पहनाया, उनको वस्त्र पहनाया, गिफ्ट दिया उनको, और दोनों ऊपर आ गए। अभी दोनों जो ऊपर आ रहे थे ना वरुण लोक से, तो भगवान ने नंद बाबा को बड़े प्रेम से वैकुंठ का दर्शन कराया, बाय द वे ऑन द वे, और नंद बाबा एकदम चकाचौंध हो गए, अरे वैकुंठ देखा मैंने, वैकुंठ देखा। अभी देखो आपने कोई अगर अद्भुत चीज़ देखी होगी तो आप शांत बैठ सकते क्या? अपने प्रभु जी आप लेक्चर बंद करो, पहले मैं बताने दो मैं क्या देखा आते वक्त रास्ते में, इतना बड़ा सांप देखा पीला रंग का, कोबरा 10 नंबरी, बाद में बोलेंगे लेक्चर शुरू करो, मुझे बताने दो पहले, आई एम सो एक्साइटेड। वैसे नंद बाबा एक्साइटेड थे, तो सभी अपने ग्वाल बालों को बताया कि अरे लाला ने मुझे तो वैकुंठ दिखाया, तो सब लोग बोल रहे हैं हमने क्या पाप किया है, हमको भी दिखाओ। थोड़े आपको मजा नहीं आएगा, आप क्यों उधर वैकुंठ आए, पापा को दिखा दिया मैंने, लेकिन आपको उधर बिल्कुल आनंद नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं नहीं अगर उनको दिखाया और वो इतने एक्साइटेड है, हमको भी देखना ही है, बहुत जिद किया सब बालकों ने, फ्रेंड लोगों ने, भगवान को बोल रहे हैं आपको मज़ा नहीं आएगा फिर भी देखना है। जैसे आपको बोलते हैं कि वो पिक्चर जो है ना वो मैटिनी में अभी फर्स्ट शो फर्स्ट देख के आए हूँ मैं, एकदम बकवास पिक्चर है, लेकिन आप देखे आए ना फर्स्ट ऑफ फर्स्ट, तो हमको भी दिखाना है। आपने कैसे देखा, तो हमको भी दिखना है। हम तय करेंगे बेकार है कि अच्छी, और हम जाके देखे आएंगे बोलेंगे इतनी बेकार थी मूवी, मैंने पहले ही बोला था आपको मत जाओ। तो वैसे उन्होंने भी जिद किया, तो भगवान बोले अभी आँख बंद करो चलो, तो आँख बंद किया और कुछ देर बाद आँख खोलो, तो आँख खोला तो सब लोग वैकुंठ में थे, सारे फ्रेंड्स सब वैकुंठ में। और वैकुंठ में कैसा है नज़ारा मालूम है आपको, कुछ आइडिया है आपको? ऐसा पूरा ऑफिशियल एटमॉस्फेयर है, उसमें हजारों चतुर्भुज विष्णु दूत खड़े हैं, सब जगह पहरा दे रहे हैं, बहुत लंबा ऑफिशियल एटमॉस्फेयर है वहाँ पर। कुछ ब्राह्मण लोग बैठ के गीत गा रहे हैं, यहाँ पर स्तुति हो रही है, इधर यज्ञ हो रहा है, उधर दूर कहीं ऊंचे आसन पर लक्ष्मी नारायण बैठे हुए हैं, और सब लोग उनकी आरती उतार रहे हैं, उनका सेवा कर रहे हैं, कोई का चमर चला रहा है, कोई मोरपंख चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब वेरी वेरी डिवाइन एटमॉस्फेयर। सब जगह सुगंधित द्रव्य जलाए जा रहे हैं, सुगंधित फूलों की माला सब पहने हुए हैं, नीलकमलों की, आने जाने वाले लोगों को सबको नीलकमलों की माला दे रहे हैं, सब पूरा क्या कहते हैं ना ऑपुलेंट एटमॉस्फेयर है, ऐश्वर्य संपन्न। और उसमें सब ग्वाल बाल अपने ड्रेस में गए थे ना, ऐसे ही जैसे थे वैसे ही, तो वो अपना भाग रहे क्योंकि वो दिख रहे हैं अरे हमारा काना तो उधर बैठा है, कोई देवी के साथ बैठा हुआ है। हाँ वो पहचान में आया उनको कि यही है वो, लेकिन इतना बड़ा मुकुट पहन के, इतना माला, इतना चकचका अलंकार, चक्का चौंध हो रही आंखें उनकी, तो चलो काना से मिलते हैं। जैसे ही आगे बढ़े सब बड़े फौज आ गए रोकने के लिए उनको, अरे कहाँ जा रहे तुम लोग, ऐसा यहाँ पर मिलना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, आप लोग कहाँ से आए हो, यहाँ पर बाजू खड़े रहो, दूर से देखो क्या चल रहा है। तो परेशान हो गए, बहुत कोशिश किया, बहुत झिकझिक किया, लेकिन वो तो बहुत पावरफुल थे, वो तो ऐसे खड़े थे जैसे कि नो चांस। अभी आप जो भीड़ में जाते हो प्रधानमंत्री को मिलने के लिए, रोड पे इतनी भीड़ है, आपको बोलते नहीं तो मेरा काका का मेरा कजिन अंकल है वो, तो होगा कजिन अंकल अभी प्रधानमंत्री के रूप में आया, बाजू में खड़े रहो, ऐसे होता है ना। बहुत लोग बहाने बनाते हैं, मेरे गांव का है वो, मेरा इधर का है उधर का है, बोले कुछ नहीं इधर खड़े रहो, पीएमओ ऑफिस में जाओ, अपॉइंटमेंट लोके मिलो और बताओ तुम मेरे कितने क्लोज अंकल हो। तो ऐसे इन्होंने बहुत जिद किया वहाँ पर। बाद में ग्वाल वाल पता है क्या बोलने लगे, अरे यहाँ का जो नायक है उसको मिल भी नहीं सकते हैं, क्या फ़ायदा है ऐसे नायक का, मतलब यहाँ का जो कैप्टन है, यहाँ का जो लीडर आदमी है, जो भी हमारी हिंदी में कहते हैं ना नायक, मतलब क्या अवर मैन ही ना, अवर गाँव का आदमी, कभी भी जाके उसको मिल सकते हैं। हाँ वो कहते हैं कि अरे बैकुंठ के देवता को तो मिल नहीं सकते, हमारा देवता जो है कभी भी मिल सकते हैं, कभी गेंद खेलो, कभी कुछ भी करो, मुँह से लड्डू छीन के खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको नहीं रहना यहाँ पर। सब लोग बोलने लगे आई डोंट वॉन्ट टू स्टे हियर। तो आकाश में से आवाज आई आँख बंद करो, तो सबने आँख बंद कर दी। फिर आवाज आई आँख खोलो, तो सबने आँख खोली, तो सब लोग जमुना किनारे खड़े हैं और कन्हैया बीच में खड़े, सब लोग गले मिलते, अरे कन्हैया मिल गया, तो वैकुंठ में तो कितने दूर थे तुम, मिल भी नहीं पाए, दर्शन भी नहीं हो पाया, तो हमारा देवता बड़ा बढ़िया देवता है, वो वैकुंठ का देवता अच्छा नहीं है। तो भगवान ने क्या बोला, पहले बोला था ना आपको, फिर भी आप समझे नहीं, जिद किया वैकुंठ देखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत अप्रत्यक्ष रीति से इनडायरेक्टली कोशिश हुई कि मैं भगवान हूँ ये बताने की, वो ग्वाल वालों को अच्छी नहीं लगी और भगवान को भी अच्छा नहीं लगा। वो जगह जगह पर कुछ समय के बाद मिटाया गया, मुंह खोला ब्रह्मांड दिखाया मिटाया गया, वैकुंठ दिखाया बंद किया सीन, एक जगह चतुर्भुज बनकर भगवान रास्ते में खड़े हो गए, रासलीला में छोड़ के चले गए ना, चार भुजा वाले बनकर खड़े हो गए रास्ते में। उसको ही पूछा तुमने कृष्ण को देखा है किधर, तो विष्णु बने हुए कृष्ण का बोलते हैं एक हाथ चार हाथ है ना, अभी चार हाथ बना खड़े हैं शंख चक्र पद्म गदा लेकर, तो एक हाथ बोलता है इधर गए, तो तुरंत सब गोपियां भागी उनके पीछे जहाँ पर दिखाया उनको, विष्णु के पीछे नहीं, विष्णु वहीं खड़े हैं। तो राधा रानी आई और राधा रानी ऐसे देखा उस विष्णु को और पूछा कृष्ण को देखा है तुमने किधर, तो जिस तरह से पूछा ना व्याकुलता से, वो विष्णु बने हुए कृष्ण को रहा नहीं गया, वो कब उसकी दो हाथ पिघल गए, शंख चक्र पद्म गदा कब गायब हो गए और कब उसके हाथ में मुरली आ गई उसको ही नहीं पता। मतलब दिखाए हुए ऐश्वर्य को प्रेम से मिटाया गया, समझ में आपको आया, द लव दैट वॉज एक्सप्रेस्ड बाय राधा रानी इन वृंदावन स्मैश्ड ऑल द ऐश्वर्य ऑफ कृष्णा एंड ब्रॉट हिम डाउन टू टू आर्म्ड फ्लूट प्लेइंग फॉर्म। ये अगर हमको समझ में नहीं आएगा तो क्यों पढ़ते रासलीला? आपको पता ही नहीं कौन है वो व्यक्ति जो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अभी दिव्य दृष्टि कैसी है? वो दिव्य दृष्टि जो है, जो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, जन्म कर्म चमे दिव्यम, वो कैसे पता चलती है? जिन भक्तों को, संतों को वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, उनके मुख से आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको रिफ्रैक्टिव एरर है आंखों में, हाँ कितना, 3.25 सिलिंड्रिकल माइनस, चश्मा निकालेगा ना कुछ दिखेगा ही नहीं आपको, सब कुछ लगेगा कि एक ही कलर का है। नहीं, चश्मा पहनेंगे तो लगेगा कि ये पेड़ है, ये फल है, ये गुलाब है, ये पीला है, ये हरा है, ऐसा आपको डिफरेंशियल दिखाई पड़ेगा। तो चश्मे की जरूरत है कि ना आपको, एग्जैक्टली टू अप्रिशिएट थिंग्स एज दे आर। उसी तरह से भगवान को अगर समझना है, एवं यो वेत्ति तत्वतः, वेत्ति यानी समझना, तत्वतः यानी एज ही इज, तो वो चश्मा पहनना पड़ेगा जो साधुओं के पास रहता है। साधुज आर बिगेस्ट ऑप्टिशियंस, दे हैव गॉट बेस्ट स्पेक्टेकल्स फॉर एवरीबडी। When you wear the spectacles given by them, you see things as they are. तो साधुओं के संग में जब आप ये समझेंगे और वो चश्मा पहनेंगे तो आपको खरी खरी दिखाई पड़ेगी एक्चुअली वास्तविकता क्या है। तो अभी हम सुखदेव जी के मुख से सुन रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि ये जो लड़का नाच रहा है ना, वो भगवान है, वो परम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम षड ऐश्वर्य पूर्ण 64 कला से पूर्ण विश्व का नियंता निर्माण करता, मेंटेन करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला यही व्यक्ति है। वो अपनी इच्छा से बालक बनकर मुरली बजा रहा है और ये गोपियां उनकी परम 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 भक्त है। अनेक जन्मों की तपस्या करने के बाद वो गोपियां बनी है ब्रज में आकर, और इतनी योग्य है कि भगवान ने जगन मोहिनी माया का प्रयोग करके उनका ये ज्ञान भी छीन लिया है कि मैं भगवान हूँ, और उनको स्पेशल एंट्री दिया वहाँ पर, और अभी वो डांस कर रहे हैं। तो वो साधु लोग बताते हैं कि डांस का मतलब क्या है। हम लोग क्या सोचेंगे, तो मैं एकदम साफ साफ बात करता हूँ, अगर मुझे बीच रात में अगर सुंदर सुंदर यंग लड़कियों के साथ में अकेला छोड़ दिया गया और बोला गया कि आप जो करना है करो, कोई कुछ नहीं देखेगा आपको, कोई बोलेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, तो मैं क्या करूँगा वो सोचकर मैं सोचूंगा कि भगवान क्या करते होंगे। समझ में आपको, जैसी मेरी प्रवृत्ति है ऐसे मुझे कमरे में छोड़ दिया और वहाँ पर अनंत गहने और रकम, डॉलर सब कुछ, यूरो सब रखा हुआ है, और मुझे छोड़ दिया, बोला जो चाहे ले लो, कोई तुमको पूछेगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा? पहले जाके मार्केट जाऊँगा, बड़ी बड़ी बैग लेके आऊँगा, बाद में एक ट्रक हायर करके एक ट्रक आके पार्किंग करूँगा, फिर चार लोगों को लेके आऊँगा और सारा शिफ्ट करके ट्रक में डाल के ले जाऊँगा उसको। अरे अभी आपने मुझे मौका दिया तो मैं पूरा प्लानिंग करके काम करूँगा ना मेरा। तो जब मैं ऐसे करूँगा तो मुझे क्या लगेगा, अगर मेरी जगह कोई दूसरा होगा तो भी वैसा ही करेगा, क्योंकि मैं वैसा हूँ, मैं ऐसे करूँगा तो आम आदमी मेरे जैसे ही होंगे। इसलिए अगर मैं काम भावना से लिप्त हूँ तो मैं क्या करूँगा वैसे ही कृष्ण भी करेंगे या किया होगा, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे समझ के बाहर है, हम कहाँ काम भावना से बाहर है, इसलिए हमको ये समझ में नहीं आएगा कि ऐसे भी होता है क्या, कोई काम भावना से परे हो सकता है क्या, सुंदर स्त्री सामने खड़े होगी भी केवल आत्मा के रूप में उसको देखेगा, ऐसा संभव है क्या, ऐसा हमको लगेगा, लेकिन ऐसा संभव है। भगवान के विषय में क्यों संभव है, सुखदेव के विषय में संभव था ये। सुखदेव जी जा रहे रस्ते से और कुछ कन्याएं वहां पर स्नान कर रही है तो सुखदेव को देख के वो लोग कुछ नहीं किया, अपना चलते रहे वो, क्योंकि पता है कि सुखदेव जी तो परे है उसके, उनको शरीर का भान ही नहीं है। और जब व्यासदेव पीछे भाग भाग के पुकारते आए, पुत्र पुत्र कहाँ जा रहे हो, तो सब लड़कियां भाग गई हो, क्योंकि उनको पता था कि व्यासदेव गृहस्थ है, उनको स्त्री पुरुष का फर्क मालूम है, उनको देह का अंतर पता है, इसलिए वो तुरंत छुप गए जाके। वैसा है दिव्यता। तो भगवान ने जो 7 साल के उम्र में करोड़ों लड़कियों के साथ में एक एक रूप लेकर नृत्य किया, वो भगवान के दिव्य प्रेम का एक प्राकट्य है, इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन लव। और कहते हैं कि जीव के प्रति भगवान को कितना प्रेम हो सकता है, पराकोटि का प्रेम, द हाइएस्ट ऑफ लव दैट गॉड कैन हैव विद द अंश ऑफ गॉड वॉज एग्जिबिटेड देयर इन रासलीला। रासलीला में वो प्रेम जो भगवान को अपने अंश के रूप में होता है, परमोच्च अवस्था में उसको प्रकट किया गया, उसको रासलीला कहते हैं। वो कोई लड़का लड़कियों का खेल नहीं है जो नवरात्रि में हम देखते हैं। मैं आपको सच बोलता हूँ, कसम से सच बोलता हूँ कि मैं परसों एक दिन नवरात्रि के एक दिन किसी एक घर में गया था एक प्रोग्राम के लिए, मेरा प्रोग्राम था। और जब आया लौट के रात को तो वो सोसाइटी में पूरा गरबा चल रहा था। मे बी 550 फ्लैट के सारे लोग जमीन पर थे उस समय, और कहीं चलने को भी जगह नहीं थी, इतने लोग डांस कर रहे थे और इतनी लड़कियां ऐसे कपड़े पहन कर नाच कर रही थी। कुछ समय के लिए क्या हुआ ना, एकदम मन में ऐसे मैन सहरबेर हो गया उन सबको देखकर। डांस नहीं किया, किसी के पास में नहीं गए, किसी को हाथ पकड़ के डांस नहीं किया, लेकिन केवल वातावरण को देखने मात्र से ऐसा मन सहरबेर हो गया पूरा। कुछ समय के लिए मैंने पत्नी को भी बोला, मेरे साथ में थी, मतलब माइंड इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड द वे द एटमोसफियर इज। क्यों क्यों ऐसा था? पूरा वातावरण कामुक था वो, द वे द गर्ल्स एंड बॉयज वर एग्जिबिटिंग देमसेल्व्स एंड वॉट दे वर डूइंग। वैसा वातावरण यहाँ नहीं था, यहाँ केवल प्रेम और प्रेम और प्रेम था। वो भी शरीर का प्रेम नहीं था, मन का प्रेम नहीं था, बुद्धि का प्रेम नहीं था, आत्मा का प्रेम था। दिव्य प्रेम इसको कहते हैं। अब जिसको दिव्यता ही पता नहीं है वो दिव्य प्रेम का कैसा व्याख्या कर सकते हैं, समझ कैसे सकते हैं, इसलिए वो गलत समझते हैं। आपको अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आपको जो समझ में आ रहा है वही आपके लिए सत्य है, इज इट नॉट ट्रू? अब मेरे लिए आई टी का कुछ नॉलेज मेरे को है नहीं, तो आप जो बोलेंगे मेरे लिए आई टी का नॉलेज है, अगर मैं आई टी प्रोफेशनल हूँ तो आई कैन डिफ्रेंशिएट ये स्पेशलाइज किसमें है, आप किसमें हैं, आप हार्डवेयर में कि सॉफ्टवेयर में, ये सब पता चलेगा मुझे। लेकिन मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। काले अक्षर बैस बराबर, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में लोगों की अवस्था होती है। इसलिए जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, ये जरूरी है समझना, तब जाकर भगवान का जो दशम स्कंद की 89 कहानियां है वो आपको समझ में आएगी कि इसका मीनिंग क्या है। आज का उत्सव भी हमको समझना इसी स्तर पर है कि पहले समझो भगवान कौन है। 7 साल के बालक में कौन से काम अवस्था हो सकती है बताओ आप? आपके घर में तो 7 साल के बालक होंगे, हाँ ये 3-4 साल का होगा, अभी थोड़ा बड़ा होगा। 7-8 साल तक उसमें घर में मन में कौन सी भावना आएगी उसको लड़की को देखकर? कुछ नहीं होगा। एक बार युवावस्था में आएंगे तो समझेगा कि लड़की लड़का क्या क्या है, सब अलग अलग भावना पैदा हो जाएगी। लेकिन 7 साल के बालक में कैसी भावना आएगी बताओ? वो तो मुरली बजा रहा है, सब लड़कियां उनको देखकर मोहित हो रही, उसको रूप को देखकर वो चली गई उनको प्रेम व्यक्त करने के लिए। तो काम भावना का तो कोई चांस ही नहीं, उधर कोई लवलेश ही नहीं है, ये किसी को समझ में नहीं आता। इसलिए कहा गया है कि भगवान के रासलीला के विषय में पब्लिक में चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अधिकतर मिसअंडरस्टैंडिंग के खाते में जाएगी। समझ में आएगा ही नहीं, कुछ पहले ठीक थे अभी और ज़्यादा कन्फ्यूज और क्या कहते हैं उसको, कंटेमिनेट हो गए, ऐसा आप समझेगा। यस, आज के दिन भगवान ने 7 साल के उम्र के थे, मतलब 7वें बर्थडे के बाद का कार्तिक है ये। बर्थडे कौन सा महीने में होता है? श्रावण महीने में होता है ना, श्रावण वद्य अष्टमी, उसके बाद का कार्तिक है, उधर भगवान ने बुलाया। हाँ, कोई युवा अवस्था में जाने का सवाल ही नहीं उठता है। युवावस्था में गए ना तब उन्होंने विवाह किया द्वारका में जाकर, उधर रास लेना ही किया गोपियों पत्नियों के साथ, पति पत्नी बनकर रहे जो भी रहना है। तो ये सब समझे बिना कृष्ण की लीलाओं को पढ़ना वढ़ना सब बेकार है, क्योंकि तो जैसा है वैसा आप अच्छे थे, पढ़ने के बाद कंफ्यूज हो गए, ऐसा हो जाएगा आपका। इसलिए हमारे आचार्यगण हमको बताते हैं कि भगवान के नाम का जप करो, साधना करो, नियम पालन करो, शास्त्र का अध्ययन करो, सत्संग करो, संतों की सेवा करो, नियम से लगे रहो सेवा में, तब जाकर हृदय शुद्ध होगा। और जब हृदय शुद्ध होगा तब ये सब कुछ धीरे समझ में आएगा इसका रहस्य क्या है। साधना के बिना किसी चीज़ को जब जज करना अच्छा नहीं है। अभी फिल्म स्टार भी आजकल आध्यात्मिक जीवन पर कमेंट करते हैं, फिल्म स्टार है वो, मतलब लोगों का मनोरंजन करना उनका काम है, डांसिंग सिंगिंग एक्टिंग, कोई विद्वान लोग नहीं है, लेकिन वो क्योंकि फेमस हो गए इसलिए वो गीता पर भी कमेंट करते हैं। एक फिल्म स्टार ने कहा, अरे हिंदू आदमी है वो कहता है कि अरे वो तो पंडरपुर में जाके स्नान करते हैं, जिसमें स्नान करते हैं उसी पानी को घर पे भी लेके आते हैं। यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट? स्नान क्यों करते हैं? पाप छोड़ने के लिए. अभी आपने स्नान किया मतलब आपने पाप छोड़ा ना, तो पाप जिसमें छोड़ा है वो पानी घर पे क्यों लेके आते हैं? ऐसे प्रश्न करते हैं. इसलिए कहते हैं कि ये नदी का स्नान बकवास है, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है. अरे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपकी योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है आपका? आप एक्टिंग करो फिल्म में अपने, उधर गोल्ड मेडल प्राप्त करो. आध्यात्मिक चीजों पर कमेंट करने का अधिकार दिया ही किसने? जस्ट बिकॉज यू आर फेमस. बोले कि नहीं हो रहा है. अगर अमिताभ बच्चन कुछ बोलेगा अगर गंगा जी के बारे में, तो आप बोलेंगे ये तो प्रमाण है, ब्रह्म वाक्य है ये. लेकिन वो कौन है? वो एक्टर है, ये सिंपली एक्टर कलाकार है. वो ब्राह्मण नहीं है, शास्त्र पढ़ने वाला वेदी वेद वेद पारंगत ब्राह्मण नहीं है वो. इज नॉट अ विप्र. तो आध्यात्म की बात सुननी है तो विप्र से सुनो, या ब्राह्मण से सुनो, या पंडित से सुनो, वैष्णव से सुनो. और मेरे पास आके इलाज का काम बात करो, मेडिकल ट्रीटमेंट की, डॉक्टर के पास जाके. लेकिन सबके पास जाके सब बात मत करो, यू विल बी कन्फ्यूज्ड. तो ये विषय ऐसा है. तो रासलीला यानी आज जो हुआ है वो आज की रात में भगवान ने सभी अपने योग्य गोपियों को, जो पूर्णता से कामना रहित थी, पूर्णता समर्पित थी, सरेंडर थी कम्प्लीटली, शरणागत थी भगवान से, उनको उन्होंने राष्ट्र में प्रवेश दिया. हमको लगता होगा कि सभी गोपियों को प्रवेश दिया, नो, बहुत सारी गोपियों को प्रवेश नहीं मिला इसके अंदर, क्योंकि वो कामना में थे अभी भी. शुद्ध अच्छी थी, मतलब अच्छी भक्त थी, वृंदावन में जन्म लेने के योग्य थी, लेकिन रास के योग्य नहीं थी. अरे लक्ष्मी देवी को प्रवेश नहीं दिया उन्होंने, शंकर जी को प्रवेश नहीं दिया, तो हम लोग कौन है कमेंट करने वाले उसके ऊपर, किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कैसे भगवान कर सकते हैं, ये क्यों किया वो क्यों किया, हु आर यू टू क्वेश्चन, व्हाट इज आवर क्वालिफिकेशन. तो आजकल क्या लगता है लोगों को कि हम किसी पर भी कमेंट कर सकते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड, लिबर्टी ऑफ स्पीच है ना, मत प्रदर्शन करने की स्वतंत्र के ऊपर हम कुछ भी किसी पर भी बोल सकते हैं. लेकिन वो गलत है, वो सही नहीं है. यू हैव टू बी क्वालिफाइड टू स्पीक ऑन समथिंग, देन यूर ओपिनियन विल बी वैल्यूड. इसलिए भगवान की लीलाओं का श्रवण जो है वो प्रामाणिक वक्ता से सुनना चाहिए, जिन्होंने प्रामाणिक वक्ता से सुना है और अध्ययन किया है. हम किसी के भी मुख से सब कुछ कुछ भी सुनते हैं और अपना अपना मत बनाते हैं. अभी गूगल बाबा जो बोलेगा वो ब्रह्म वाक्य है, कोई बुक्स नहीं खोलता है आजकल, गूगल को पूछता है कि रामायण में देखो कितना फनी चीज़ है. एक प्रश्न पूछा गूगल को कि रामायण के समय रावण की उम्र कितनी थी, तो एक ही पेपर पे तीन उत्तर है. एक उत्तर है 10,000 वर्ष के थे रावण, और उसी के आगे लिखा है 12,00,000 वर्ष के थे. वे हाउ डू यू बिलीव दिस, कपोल कल्पित. कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उसको कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, और सब लोग कमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर, और सबको उसमें लिबर्टी है ना बोलने की. आपको ऐसा नहीं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है फिर आपको आंसर देने की पासवर्ड दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं. उधर एनी बडी कैन से एनीथिंग देयर. आप कह सकते हो कि मेरा लगता है रावण की उम्र एक साल थी, 1,000-1,00,000 साल थी, यू कैन राइट देयर. और वो भी लिखा जाएगा उधर, तय करना है पढ़ने वालों को कौन सा लेना है उसको. अब ये कोई नॉलेज है क्या? आप भगवद गीता खोलो, 5,500 वर्ष हो गए, कोई चेंज नहीं उसके अंदर. ऐसा नहीं बोल रहे भगवान, अभी जो नया एडिशन निकाल रहा हूँ 2022 का, वही जो बोला था अर्जुन को, बहुत पुराना हो गया, वो ऑब्सोलेट हो गया. उस समय युग अलग था, टाइम अलग था, आदमी भी अलग था सुनने वाला. अभी आदमी भी चेंज हो गए, देश भी चेंज हो गए, सब कुछ चेंज हो गया है. टाइम टेकिंग आउट माय 115th एडिशन. ऐसा होता है कभी? ऐसा हुआ है? नहीं है, वही है भगवद गीता, वही श्लोक है. कोई हार्ड बाउंड है, सॉफ्ट बाइंड है, बड़ा है, छोटा है, मराठी, हिंदी, गुजराती, वो आ रहा है, लेकिन टेक्स्ट नहीं चेंज हो रहा है उसका, क्योंकि वो शाश्वत चिरंतन शास्त्र है. दिव्य चीजों को दिव्य तरीके समझेंगे तो समझ में आएगा. दिव्य चीजों को अपने मटेरियल माइंड से समझने का प्रयास करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन निश्चित बढ़ जाएगा. इसलिए संतों से सुनो, संतों से पढ़ो, उनसे प्रश्न करो, उनसे समझने का प्रयास करो, तो आपको एवं यो वेत्ति तत्वतः, जैसा है वैसा समझ में आएगा और आपको आनंद आएगा और हृदय में साक्षात्कार हो जाएगा. आज के दिन हमको क्या सीखना है? कुछ समझ में नहीं आया तो भी चलेगा, सीखना क्या है? भगवान ने मुरली बजाकर बुलाया, गोपियां सब छोड़कर भाग के चली गई. ओबीडियंस एंड सरेंडर. ये हमको सीखना है, उस पर कमेंट नहीं करना है। ऐसे कैसे उल्टा स्त्रियाँ थी, वो सब अपना कर्तव्य छोड़ के भागी, बच्चों को छोड़ के भागी, पति को छोड़ के भागी। उसको समझने के लिए आपको एक लेवल लगेगा कि ऐसे कौन से अवस्था में थी वो जो ऐसा कर सकती है। भगवान ने जाकर परीक्षा भी लिया उनको, रात को 12 बजे, क्यों आए तुम लोग यहाँ पर, चले जाओ अपना अपना कर्तव्य करो। उधर पति पतिव्रता कैसे होनी चाहिए, उस पर भगवान ने एक प्रवचन भी दिया है बीच में, बहुत कंफ्यूजिंग प्रवचन दिया उनको। वो बोल रहे हैं आपने हमको बुल्ली बजा के बुलाया और हमको अच्छे पति पतिव्रता बनने का प्रवचन सुना रहे हो। आपने मुरली बजाकर बुलाया तभी हमने सब कर्तव्य छोड़ दिए उधर ही, और अभी आत्मस्वरूप में आपके सामने आ गए। बहुत सारा प्रश्न उत्तर किया है वहां ने भगवान ने, यानी उनकी